नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के लिए जारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के घोषणा पत्र में अति धनवानों पर कर लगाने, सामान्य संपत्ति कर और पैतृक संपत्ति कर कानून बनाने के साथ साथ निजी क्षेत्र में आरक्षण, चुनाव के लिए सरकारी धन की उपलब्धता और राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट चंदे पर प्रतिबंध लगाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। घोषणा पत्र में सीपीआईएम ने यह भी कहा है कि वो काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और धन शोधन रोकथाम अधिनियम को खत्म करने का वादा किया है। पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी और पोलित ब्यूरो सदस्य प्रकाश करात, वृंदा करात, नीलोत्पल बसु और तपन सेन ने कल नई दिल्ली में घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर श्री येचुरी ने कहा कि पार्टी देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को और मजबूत करेगी। उन्होंने लोगों से लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके सहयोगियों को हराने का आग्रह किया ताकि केंद्र में एक वैकल्पिक सरकार बन सके। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित पंजाब विश्वविद्यालय के ललित कला संग्रहालय की गैलरी में आयोजित 10वीं वार्षिक महिला कलाकार प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद राज्यपाल ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु विक भी उपस्थित रही। श्री पुरोहित ने सभी प्रतिभागियों और पुरस्कार पाने वालों को बधाई देते हुए आर्टस्केप्स की महिला कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने के लिए किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है कि आर्टस्केप्स महिलाओं की रचनात्मकता को इस प्रदर्शनी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परीक्षा आकलन और मूल्यांकन विधियों में परिवर्तन किया है। इस नई पहल में सक्षमता आधारित प्रश्न अधिक होंगे जबकि अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न कम संख्या में होंगे। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न, स्थिति आधारित या अन्य प्रकार के प्रश्न 40 से बढ़ाकर 50% कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ लघु और दीर्घ उत्तर प्रश्नों सहित अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न 2024-25 सत्र की परीक्षाओं में 40% से घटाकर 30% तक कर दिए गए हैं। हरियाणा पुलिस ने बेटियों की शादी में कन्यादान के नाम पर लोगों को ठगने और पैसे ऐंठने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान बुबलहेड़ी निवासी मौलाना अरशद और पलवल जिला निवासी राशिद के तौर पर हुई है। उन्होंने कन्यादान के नाम पर 1400 लोगों से करीब 14 करोड़ रुपए की ठगी की है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने अलग अलग पैकेज का इस्तेमाल कर अपने घोटाले को अंजाम दिया और पीड़ितों को 1 लाख रूपये से 1.5 लाख रूपये तक के विवाह पैकेज का लालच दिया। इन पैकेजेस में कथित तौर पर एक मोटरसाइकिल, शादी का पूरा सामान और कन्यादान की रस्म के तौर पर 21,000 रूपये की नकदी शामिल थी। पुलिस ने बताया कि नगीना तहसील के नांगर शाहपुर निवासी जुबैदा ने इस वर्ष 1 अप्रैल को ही ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने साथियों की मदद से लगभग 1400 पीड़ितों से उनकी बेटियों की शादी के लिए कन्यादान की व्यवस्था करने के नाम पर 14 करोड़ रूपये ठगने की बात कबूल की है। इसके बाद दोनों को कल अदालत में पेश किया गया और 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पानीपत में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर शराब की अवैध तस्करी को रोकने के लिए 15 टीमों का गठन किया गया है। जिले में अलग अलग स्थान पर व उत्तर प्रदेश के साथ लगती सीमा के क्षेत्र में नाके लगाकर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को कह दिया गया है कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैथल की अतिरिक्त उपायुक्त एवं स्वीप अभियान की नोडल अधिकारी डॉ. जया श्रद्धा ने सभी नागरिकों से सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में सहभागिता की अपील की है। उन्होंने कहा कि चुनाव में एक एक वोट की कीमत होती है, लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक मतदान जरूरी है। अतिरिक्त उपायुक्त गामटी के नजदीक चल रहे महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान एवं रक्तदान शिविर में विद्यार्थियों को संबोधित कर रही थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।